स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। आज है नवंबर की 16 तारीख और दिन गुरुवार। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर आज पहुंचेंगे अयोध्या, लेकिन क्या राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का निकल सकेगा कोई हल?
मिलने के लिए किसी को रोका नहीं, जिनसे न मिले उनसे जो कह दिया कि आप उनसे बता दो भाई, ये प्रपोजल अगर आप देना चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद की जगह छोड़ दें तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, कोई और प्रपोजल हो तो लिख के लाइए।
भोपाल में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र 7 दिनों से डायरेक्टर को हटाने की मांग को लेकर बैठे हैं धरने पर। दुनिया जहान में आज बात लिबनान की।
नेक्स्ट स्टेप उनका होगा कि लेबनान में करें और सीरिया में करें और जिससे ईरान अपनी जगह पर सिमट के रह जाए, पासा उन्होंने डाला है, सीधा पड़े या उल्टा।
लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार रजनीश कुमार से। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी विदेश नीति की उपलब्धियों को बताने के लिए लाइव टीवी का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि अमरीका एक बार फिर से भविष्य को लेकर आश्वस्त है। ट्रंप ने कहा कि वो उस राह पर विदेश नीति को ले जा रहे हैं जहां उत्तर कोरिया को परमाणु हथियार के जरिए ब्लैकमेल नहीं करने दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि इस्लामिक स्टेट को भी जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा है। अमरीकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि जो देश अमरीका के साथ व्यापार में एक तरफा फायदा उठा रहे थे उनके लिए उनके दिन अब लद गए हैं।
I called on every nation, including China and Russia, to unite in isolating the North Korean regime, cutting off all ties.
मैंने चीन और रूस समेत सभी देशों से कहा है कि वो उत्तर कोरिया से हर तरह के व्यापारिक संबंधों को खत्म करें। जब तक उत्तर कोरिया खतरनाक उकसावे भरे कदमों को पीछे नहीं खींच लेता है तब तक उसे अलग थलग करना चाहिए। हम उत्तर कोरिया को परमाणु शक्ति संपन्न देश नहीं बनने देंगे। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। जिम्बाब्वे की सत्ता पर सेना के नियंत्रण के 24 घंटे बाद वहां मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। आज़ादी के बाद से देश की सत्ता पर काबिज राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे अब भी राष्ट्रपति हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि सेना ने उन्हें नज़रबंद कर रखा है। अपुष्ट खबरों के मुताबिक उत्तराधिकार की दौड़ में शामिल राष्ट्रपति मुगाबे की पत्नी ग्रेस मुगाबे नामीबिया फरार हो गई हैं। संवाददाताओं का कहना है कि राजधानी हरारे में लोग मानकर चल रहे हैं कि यह मुगाबे युग का अंत है। हालांकि 93 साल के मुगाबे का जनसमर्थन ग्रामीण इलाकों में अब भी है। जिम्बाब्वे से कोई गंभीर हिंसा की खबरें नहीं हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने जिम्बाब्वे में सभी पक्षों से संयम रखने की अपील की है। दूसरी तरफ अफ्रीकी यूनियन ने कहा है कि सेना ने उन्हें आश्वस्त किया है कि सत्ता पर नियंत्रण अस्थायी है और यह तख्ता पलट नहीं है। अमरीकी दौरे पर गए अफ्रीकी यूनियन के चेयरमैन मौसा फकी महमत ने कहा कि AU जिम्बाब्वे में किसी भी तरह के असंवैधानिक बदलाव का विरोध करेगा। चीन ने भी कहा है कि जिम्बाब्वे के घटनाक्रम पर उसकी नज़र बनी हुई है। जिम्बाब्वे का चीन सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने लेबनान के प्रधानमंत्री साद हरीरी और उनके परिवार को आमंत्रित किया है। हालांकि मैक्रों ने जोर देकर कहा है कि यह राजनीतिक प्रवास का प्रस्ताव नहीं है। लेबनान के प्रधानमंत्री ने अचानक से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के बाद से लेबनान में राजनीतिक संकट गहरा गया है। फ्रांस के अधिकारियों ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में हरीरी फ्रांस आएंगे। इससे पहले लेबनान के राष्ट्रपति ने सऊदी अरब पर साद हरीरी को नज़रबंद करने का आरोप लगाया था। साद हरीरी अभी रियाद में ही हैं। नाइजीरिया के उत्तर पूर्वी शहर मैदुगुरी में एक आत्मघाती हमला हुआ है। इस हमले में कम से कम 10 लोग मारे गए हैं और कई लोग जख्मी हुए हैं। खबरों के मुताबिक हमलावर महिलाएं थीं। मैदुगुरी शहर इस्लामिक चरमपंथी संगठन बोको हराम का गढ़ है। यहां अक्सर महिला आत्मघाती हमलावरों से धमाके कराए जाते हैं। ग्रीस में आई अचानक बाढ़ से कम 14 लोगों की मौत हो गई है और 13 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी के कार्यक्रम नमस्कार भारत में। मैं हूं इकबाल अहमद। आज है नवंबर की 16 तारीख और दिन गुरुवार और इस वक्त हो चुके हैं भारत में 6:34:45। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ मोबाइल फोन और फेसबुक पर भी लाइव सुन सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत उत्तर प्रदेश से। अयोध्या में मंदिर मस्जिद विवाद सुलझाने के लिए सभी पक्षों में आम सहमति बनाने के मकसद से आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर आज अयोध्या पहुंच रहे हैं। इससे पहले उन्होंने लखनऊ में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से भी मुलाकात की। रविशंकर इससे पहले भी दोनों ही समुदायों के कुछ धर्माचार्यों से मिल चुके हैं, लेकिन उनकी कोशिशों को मीडिया में चाहे जितनी जगह मिल रही हो, इस मामले से जुड़े पक्षकार न तो इसे लेकर बहुत गंभीर हैं और न ही उन्हें इस प्रयास से कुछ हासिल होने की उम्मीद ही दिखाई दे रही है। सुनिए लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र की एक खास रिपोर्ट।
बताया जा रहा है कि रविशंकर ये प्रयास खुद कर रहे हैं, सरकार ने उन्हें नहीं भेजा है। हालांकि मुख्यमंत्री ने उनके प्रयास की तारीफ जरूर की है, लेकिन अयोध्या विवाद से जुड़े पक्षकार उनके इस प्रयास में कोई उम्मीद नहीं देख रहे हैं। राम जन्मभूमि के अंदर रामलला विराजमान की ओर से पक्षकार त्रिलोकीनाथ पांडे कहते हैं,
अयोध्या में इतने लोग ये दुकान खोले हैं, मुकदमे के दाहिने तरफ कहीं नहीं है, धर्माचार्यों के श्रेणी में वो कहीं नहीं है, किसी पंथ के वो श्रेष्ठ नहीं है, और वो लोग आज रविशंकर जी के बातचीत करने में अगुवाई कर रहे हैं। 5 दिसंबर फाइनल हियरिंग की डेट आ गई जन्मभूमि की, तो ऐसी स्थिति में भाई यदि कोई पहल करता है तो ये मानता हूँ डिस्टर्ब कर रहा है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में जिन तीन पक्षों को विवादित स्थल मिला है उनमें एक पक्ष रामलला विराजमान भी है। पांडे का दावा है कि वही इस स्थल की देखरेख करते हैं। एक अन्य पक्ष निर्मोही अखाड़ा है जिसे विवादित स्थल का कुछ भाग दिया गया है, और तीसरा पक्ष है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और कुछ अन्य मुस्लिम पक्षकार। निर्मोही अखाड़े के प्रमुख दिनेंद्र दास ने श्री श्री रविशंकर से पहले भी मुलाकात की थी और उन्हें इस पहल में उम्मीद नजर आ रही है।
उनका प्रयास है कि रामलला हो जाए, पांच विपक्ष पार्टी से मिलेंगे उनको सफलता मिलेगा।
वहीं मुस्लिम पक्षकारों की ओर से कोर्ट में इस मामले को देख रहे वकील और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के चेयरमैन जफर याब जिलानी इस कवायद को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।
हमने कोई मिलने के लिए किसी को रोका नहीं, उनसे न मिले, उनसे जो कह दिया कि आप उनसे ये बता दो भाई ये प्रपोजल अगर आप देना चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद की जगह छोड़ दें तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, कोई और प्रपोजल हो तो लिख के लाइए वो
माने। अयोध्या में इस मामले के प्रमुख पक्षकार इकबाल अंसारी तो श्री श्री रविशंकर की मध्यस्थता पर ही सवाल उठाते हैं।
अयोध्या में हमारे यहाँ साधु संत बहुत हैं और उनसे जो है नामी ग्रामी साधु महा जो है साधु और संत यहाँ है, जनाब ओम पुजारी जी से हम लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, हनुमानगढ़ी के महान ज्ञानदास जी से हम लोग जो है मिलते रहते हैं। हमारे यहाँ साधुओं की कमी नहीं है, ये तो रविशंकर जी जो है कैसे आ रहे हैं, क्या फार्मूला है, ये तो कूद पड़े हैं तो राजनीति में आ रहे हैं कि थोड़ा सा हमारा भी काम हो जाए।
इससे पहले शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने भी तमाम पक्षकारों से मिलने और मामले में रविशंकर के साथ पहल करने का दावा किया था, लेकिन उनकी कोशिशों को तो मुस्लिम संगठनों ने ही न सिर्फ सिरे से खारिज कर दिया था बल्कि उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप भी लगाए। दरअसल अयोध्या विवाद की नियमित सुनवाई 5 दिसंबर से सुप्रीम कोर्ट में होनी है। सवाल उठता है कि उससे ठीक पहले एक ऐसी कोशिश क्यों हो रही है जिसमें दोनों पक्ष पहले से ही कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार सुभाष मिश्र कहते हैं,
मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत गंभीर एक्सरसाइज है, इनको कोई मतलब जुडिशरी या कोर्ट की तरफ से भी कोई सैंक्टिटी नहीं है, गवर्नमेंट ने भी इनको कोई इंटरलोक्यूटर वगैरह बनाया नहीं है। ये जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात कर भी रहे हैं मान लीजिए, तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी जो फॉलोअर्स है दोनों वर्ग के इनका जो भी मान लीजिए आगे पैक्ट होता भी तो उसको मानेंगे, इसमें शक है। ऑप्टिकल वैल्यू के लिए सारा ड्रामा है मीडिया इवेंट के लिए, ताकि अयोध्या मंदिर को राम मंदिर मस्जिद को सेंटर स्टेज पे रखा जाए और इसी बहाने कुछ न कुछ चलता रहे।
बहरहाल श्री श्री रविशंकर आज अयोध्या में तमाम पक्षों और संगठनों से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के बाद कोई सुलह समझौते जैसी स्थिति शायद ही बने, लेकिन जानकारों का कहना है कि इसका अंदाजा तो मिल ही सकता है कि इस मामले में राजनीतिक गर्माहट अभी भी वैसी ही है या फिर कुछ परिवर्तन हुआ है। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
तो लखनऊ के बाद अब चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी के छात्र पिछले 7 दिनों से डायरेक्टर को हटाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। छात्रों ने डायरेक्टर के खिलाफ कई तरह के आरोप लगाए हैं, जिनमें संस्थान में अनियमितताएं, जातिवाद और छात्राओं पर अभद्र टिप्पणी शामिल हैं। पेश है भोपाल से शुरय न्याजी की ये रिपोर्ट।
ये विरोध भोपाल के नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी के छात्रों का है, जो पिछले कई दिनों से कक्षाओं का बहिष्कार कर रहे थे। इन्होंने अपने डायरेक्टर पर कई तरह के आरोप लगाए। इनमें संस्थान में भारी अनियमितताएं, परीक्षा और वित्तीय मामलों में पारदर्शिता की कमी, अवकाश नहीं दिया जाना और छात्रों के खिलाफ कमेटी बनाकर अनुशासनात्मक कार्रवाई करना शामिल था। वहीं छात्रों ने डायरेक्टर पर जातिवाद और छात्राओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का भी आरोप लगाया। एक छात्र ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि डायरेक्टर ने छात्रों को हर तरह से परेशान किया।
हम लोग चाहते हैं कि सर एग्जामिनेशन में पारदर्शिता आए, कि सर बच्चों को ये पता चले कि रूल्स क्या हैं। सर कोडिंग और डीकोडिंग के रूल्स ये लोग अपने मन से चेंज करते हैं। सेम यही सर दिक्कत ये है कि यही यूनिवर्सिटी है, टीचर्स स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, टीचर्स स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बाद उन्हीं के पेपर बनाते हैं और वही कॉपी चेक करते हैं। सर हमारे कॉलेज में 5 बजे तक क्लास लगती है, उसके बाद 9 बजे लाइब्रेरी बंद हो जाती है। सर 9 बजे लाइब्रेरी बंद होने का कौन सा सिस्टम है? या 22-23 साल के बच्चे हैं सर, यहाँ पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकल रहे हैं।
वहीं एक छात्रा जो डायरेक्टर के दुर्व्यवहार का शिकार हुई, उसने उन पर गंभीर आरोप लगाए।
एक बार मुझे डायरेक्टर ने अपने ऑफिस में बुलाया था, उधर 4 आदमी बैठे थे, कोई औरत नहीं थी। वो 4 आदमी बैठ के मुझे घूर रहे हैं, मेरे ऊपर मेरे पहनावे पे कमेंट कर रहे हैं। डायरेक्टर ने उसी समय मुझे बोला कि तुम जैसी लड़की अपनी शर्म और इज्जत बेच कर यहाँ चली आती हो, चली जाओ यहाँ से। और जिस तरीके से उन्होंने मुझसे बात करी है वो बहुत बहुत डिसरिस्पेक्टफुल था। मैंने कभी ऐसे किसी को बात करते नहीं सुना है किसी औरत से। और मुझे जब बुलाया गया तो मुझे पता नहीं था मुझे क्यों बुलाया जा रहा है। मुझे कई बार टोका जा चुका है एडमिन के द्वारा ही कि आप, कई बार मुझे जो रजिस्ट्रार है उन्होंने बोला कि आप मेरे कपड़ों पे कमेंट किया। उस टाइम मैंने कुछ रिएक्ट नहीं करा, पर जब मुझे डायरेक्टर ने अपने ऑफिस में बुलाया तो मेरे लिए बहुत ही गंभीर बात हो गई थी कि कोई डायरेक्टर मुझे इस तरह की मेरे कैरेक्टर पे ऐसे लालच।
छात्रों का कहना है कि आंदोलन को इस स्तर पर लाने के लिए स्वयं डायरेक्टर ही जिम्मेदार हैं, जिन्होंने यह स्थिति पैदा कर दी। छात्रों के धरने को खत्म कराने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भी कई प्रयास किए। वहीं डायरेक्टर SS सिंह ने छात्रों के सारे आरोपों को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा,
मेरा कुछ नहीं है, सो फार माय कंसर्न ऑल एलिगेशंस आर बेसलेस, फॉल्स टू मैलाइन माय कैरेक्टर एंड द करियर। आई हैव नेवर डन दैट। आई हैव कंप्लीटेड 9 इयर्स ऑन द कैंपस। इन द पास्ट देयर वाज नो कंप्लेंट ऑफ दैट। डू यू थिंक दैट एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन आई विल डू सच नॉनसेंस? किसी को, मोदी जी को भी 3.5 साल के बाद देखना पड़ता है दिल्ली में, है कि नहीं? डेलीगेशंस जो जाता है कंट्री भर का, एक एक महीने डेढ़ महीने जो है बैठते हैं लोग, वापस चले जाते हैं। कौन सी डिमांड फुलफिल हुई है डेलीगेशन से वहाँ पर? लेकिन डिमांड करना डेमोक्रेसी में तो उसका पार्ट हो गया है। एट वन स्टेज दे सेड वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू, वी वांट योर रिजिग्नेशन। हु आर दे? दे आर नॉट माय अपॉइंटिंग अथॉरिटी।
छात्रों में डायरेक्टर के खिलाफ इतना गुस्सा था कि उन्होंने कैंपस के अंदर डायरेक्टर मिसिंग के पोस्टर लगा दिए और वहीं उनके बंगले के बाहर फूलों से लिख दिया, गेट वेल सून मामू। शुरहनियाजी, BBC न्यूज भोपाल।
ये थे भोपाल से शुरय न्याजी। और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर, और अब वक्त हो चला है हमारी खास पेशकश दुनिया जहान का। दुनिया जहान में आज बात करते हैं लिबनान की। करीब 2 हफ्ते पहले लिबनान के प्रधानमंत्री साद अल हरीरी के इस्तीफे के बाद मध्य पूर्व के देशों में राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है। हरीरी ने अपने इस्तीफे का ऐलान सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किया था। कल यानी बुधवार को पहली बार लिबनान के राष्ट्रपति माइकल आउन ने सऊदी अरब पर सीधे सीधे प्रधानमंत्री साद अल हरीरी और उनके परिवार को हिरासत में रखने का आरोप लगाया है। हालांकि हरीरी ने एक टेलीविज़न चैनल को इंटरव्यू में कहा है कि वो पूरी तरह से आज़ाद हैं, उन्हें बंधक नहीं बनाया गया है और वो जल्द ही लिबनान लौटेंगे। खाड़ी के देशों के इस संकट पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे साथी वात्सल राय आज की दुनिया जहान में।
दुनिया जहान। तारीख थी 14 फरवरी 2005 और जगह लेबनान की राजधानी बेरूत। लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री रफीक हरीरी का काफिला राजधानी की सड़कों से गुजर रहा था। सधी रफ्तार से दौड़ती कारें जैसे ही शहर के मशहूर सेंट जॉर्ज होटल के करीब से गुजरी, एक जोरदार धमाका हुआ। चारों तरफ चीख पुकार शुरू हो गई। बुरी तरह टूटी कारों से उठते धुएं की लकीरें दूर तक दिखाई देने लगी। एम्बुलेंस और पुलिस गाड़ियों के सायरन और रोते बिलखते लोगों की आवाजें कान के पर्दों को चीरने लगी। इस धमाके में 1990 के दशक में लेबनान के सबसे प्रभावी नेता रफीक हरीरी समेत 22 लोगों की मौत हो गई। लेबनान में सीरिया के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुए और सीरिया को अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी। देश में राजनीतिक अस्थिरता का एक और दौर शुरू हो गया। लंबी जांच के बाद एक इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने ईरान समर्थित शिया समूह हिजबुल्ला के 5 सदस्यों को रफीक की हत्या का दोषी ठहराया, लेकिन हिजबुल्ला ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया। बेरूत में हुए उस धमाके के करीब 15 साल बाद यानी नवंबर 2017 के पहले हफ्ते में हरीरी सरनेम वाले लेबनान के एक और प्रमुख नेता ने दावा किया कि उनके लिए भी वैसी ही साजिश रची जा रही है। ये है साद अल हरीरी, रफीक हरीरी के बेटे। उन्होंने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में एक बयान जारी किया और प्रधानमंत्री पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने लेबनान में खासा प्रभाव रखने वाले हिजबुल्ला और ईरान पर आरोपों की झड़ी लगा दी और इसी के साथ पूरे क्षेत्र में नए संघर्ष से जुड़ी आशंकाओं के बादल घिर गए। मध्य पूर्व की राजनीति पर नजर रखने वाले इसे सुन्नी और शियाओं के पारंपरिक संघर्ष से जोड़कर देख रहे हैं। एक तरफ है सुन्नी नेतृत्व वाला सऊदी अरब और दूसरी तरफ शिया प्रभुत्व वाला ईरान। मध्य पूर्व मामलों के विशेषज्ञ कमर आगा कहते हैं कि अगर हिजबुल्ला कमजोर होता है तो इसका असर पूरे क्षेत्र में ईरान के बढ़ते दबदबे पर होगा।
लेबनान में अगर हिजबुल्ला कमजोर होती है तो शिया इन्फ्लुएंस जो है ईरान का सीरिया में भी इफेक्टेड होगा, इसलिए हिजबुल्ला काफी बड़ा रोल था आईएसएस से लड़ने में और बशर अल असद की हुकूमत को बचाने में सीरिया के अंदर। उन्हीं ने इराक में भी शिया मलिशिया उसकी मदद की थी जो आईएसएस से लड़ रहे थे।
ईरान पर तोहमत लगाते हुए इस्तीफे का ऐलान करने वाले साद की गिनती अपने पिता की ही तरह देश के सबसे दौलतमंद और प्रभावी नेताओं में होती है। उन्हें रफीक ने ही अपना उत्तराधिकारी चुना था। साद हरीरी साल 2009 से 2011 तक लेबनान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। बीते साल नवंबर में उन्हें राष्ट्रपति मिशेल आउन ने सरकार बनाने के लिए नामित किया था। साद के नाटकीय तरीके से इस्तीफा देने और इस्तीफे के ऐलान के लिए रियाद को चुनने पर कई सवाल उठे। इस बीच जब सऊदी अरब और उसके समर्थक खाड़ी देशों ने अपने नागरिकों को तुरंत लेबनान छोड़ने की सलाह दी तो वहां संघर्ष छेड़ने की आशंकाओं को बल मिला। साद हरीरी भले ही मौजूदा हालात की तुलना फरवरी 2005 से कर रहे हों, लेकिन लेबनान में भारत के राजदूत रह चुके डॉक्टर बेनी प्रसाद अग्रवाल उनके तर्कों से सहमत नहीं है।
यकीन नहीं होता कि आज की स्थिति में वहाँ जो हिजबुल्ला है वो साद हरीरी को मारने की कोशिश करेगा तो उनको मिलेगा क्या? तो ये एक आर्टिफिशियल चीज है, मुझे सही नहीं लगता।
लेबनान में बदलते घटनाक्रम के बीच देश में हिजबुल्ला के नेता हसन नसरल्लाह ने आरोप लगाया कि सऊदी अरब ने साद हरीरी को उनकी मर्जी के बिना रोका हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि सऊदी अरब ने लेबनान के खिलाफ जंग छेड़ दी है और इसराइल को भी भड़का रहा है। कई जानकार ये भी दावा कर रहे हैं कि लेबनान में जारी उथल पुथल की स्क्रिप्ट रियाद में लिखी जा रही है और इसके रणनीतिकार सऊदी अरब के शहजादे मोहम्मद बिन सलमान है। डॉक्टर बेनी प्रसाद अग्रवाल भी ऐसा ही दावा कर रहे हैं।
क्राउन प्रिंस का जो एक्शन है इट विल डीस्टेबलाइज लेबनान, जिस तरह वो यमन में कर रहे हैं कि शियास को खत्म करना चाहते हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप उनका होगा कि लेबनान में करें और सीरिया में करें और जिससे ईरान अपनी जगह पर सिमट के रह जाए। पासा उन्होंने डाला है, सीधा पड़े या उल्टा।
लेकिन सऊदी अरब में जन्मे और वहाँ व्यापारिक हित रखने वाले साद हरीरी रियाद को क्लीन चिट दे रहे हैं।
मैं सऊदी अरब में आजाद हूँ, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से कल जा सकता हूँ। आप जानते हैं कि मेरा एक परिवार है, क्या मेरे पास उन्हें सुरक्षित करने का अधिकार नहीं है?
हालांकि साद हरीरी के दावों पर सवाल उठाने वालों की कमी नहीं है। मध्य पूर्व मामलों के विशेषज्ञ कमर आगा को सुनिए।
जिस तरीके से उनको बुलाया गया और फिर उसके बाद बहुत समय तक वो लोगों से नहीं मिले, केवल रॉयल फैमिली के लोगों से वो मिलते थे, यूएई में भी वो रॉयल फैमिली के टच में थे, कोई उनका टच उनकी पॉलिटिकल पार्टी तक से नहीं था।
लेबनान में दिलचस्पी सिर्फ अरब देशों और ईरान की ही नहीं है। महज 10,000 वर्ग किलोमीटर दायरे में सिमटा यह देश वाणिज्यिक और रणनीतिक तौर पर बेहद अहम है। इसकी सीमाएं सीरिया और इसराइल से लगती हैं। 1980 के दशक में इसराइल ने दक्षिणी लेबनान पर हमला किया। इसके बाद हिजबुल्ला का उदय हुआ और शिया और सुन्नियों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। लेकिन लेबनान का संविधान देश के शिया, सुन्नी और ईसाई समुदाय को जोड़कर रखने वाला है। ईसाइयों की मौजूदगी लेबनान में अमरीका की खास दिलचस्पी जगाती है, लेकिन डॉक्टर बेनी प्रसाद अग्रवाल का दावा है कि निजी हितों की वजह से अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब का साथ दे रहे हैं।
ट्रंप साहब के जो सन इन लॉ हैं कुशनर, वो आए थे मिडल ईस्ट, उनकी बस एक ही इच्छा है कि ये हमने इजरायली पैलेस्टीनियन एग्रीमेंट करवाया, इसके लिए वो सऊदी अरेबिया को अपने साथ लाना चाहते थे। जब सऊदी अरेबिया गए ट्रंप साहब, तो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की बातें हो गई। अगर वो फैक्टर ही डोमिनेट करता है और वो इसको नहीं समझते तो समस्या बिगड़ सकती है।
लेकिन अमेरिका भी लेबनान में संघर्ष भड़कने के जोखिम से वाकिफ है। अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने दूसरे देशों को आगाह किया है कि वो लेबनान को छद्म युद्ध के लिए इस्तेमाल न करें। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने भी चेतावनी दी है कि इस क्षेत्र में नए संघर्ष के नतीजे घातक होंगे। लेकिन लेबनान संकट को हल करने के लिए दुनिया की कई ताकतें सक्रिय दिख रही हैं। डॉक्टर बेनी प्रसाद अग्रवाल मानते हैं कि लेबनान संकट हल करने में फ्रांस की भी दिलचस्पी है।
इट वॉज अ फ्रेंच कॉलोनी एट वन स्टेज। फ्रेंच लोग शायद अमेरिका पे प्रेशर डालें कि भी आप सऊदी अरेबिया पे कुछ दबाव डालिए।
वही कमर आगा की राय है कि संकट भले ही कितना भी गंभीर दिख रहा हो, ईरान इसे टकराव तक ले जाने से बचेगा।
ईरानियन बहुत समझदार लोग हैं, वो अपनी कैपेसिटी जानते हैं, वो एक लिमिट तक कन्फ्रंटेशन में जाते हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि ईरान लगातार बातचीत भी करता रहता है।
लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या बात किसी एक पक्ष के संयम रखने से सुलझ पाएगी, या फिर अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र और दूसरे देश संकट के समाधान के लिए सभी पक्षों पर वास्तविक दबाव बनाएंगे। इस सवाल के जवाब से ही तय होगा कि लेबनान और मध्य पूर्व पर छाए आशंका के बादल छटेंगे या नहीं।
तो मध्य पूर्व में संकट के बादल बता रहे थे वात्सल राय। और अब वक्त हो चला अखबारों की समीक्षा का, और हमारे साथ ही रजनीश तमाम अखबारों के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रजनीश, बताइए आपके अखबार क्या कहते हैं आज?
हम शुरुआत करते हैं इंडियन एक्सप्रेस से। इंडियन एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर जो लीड खबर है वो भारत सरकार के पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू कश्मीर में हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए 24 एयरपोर्ट और हेलीपोर्ट बनाने की योजना पर काम कर रही है। खास करके कहा जा रहा है कि जो ये जो भारत सरकार की जो योजना है वो सामरिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें 9 चीन की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश में हेलीपैड या एयरपोर्ट होंगे, मणिपुर और असम में 5-5, जम्मू कश्मीर में 2, 1-1 मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम में बनाए जाएंगे। भारत सरकार इसे RCS योजना के दूसरे चरण में अंजाम तक पहुंचाएगी। अखबार का कहना है कि यह सामरिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही इंडियन एक्सप्रेस की एक दूसरी खबर है जो कि बीजेपी गुजरात विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की सूची जारी करने में देरी कर सकती है। हालांकि अभी तक विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी उम्मीदवारों की सूची नहीं जारी की है। दूसरी तरफ संजय लीला भंसाली की जो आने वाली फिल्म पद्मावती है उसे लेकर विवाद बिल्कुल नहीं थम रहा है।
अब क्या हुआ?
इंडियन एक्सप्रेस का कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को एक खत लिखा है जिसमें कहा है कि जो वहाँ के राजपूत समाज हैं उनमें कथित रूप से ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई है, उसे लेकर गुस्सा है, तो आप इसको देख लें। और एक खबर गुजरात के खेड़ा जिले से है, जिसमें कि अभी हम देखते हैं कि हार्दिक पटेल जो कि पाटीदार नेता है और जिग्नेश मेवाणी दलित नेता है, दोनों में गठजोड़ है। लेकिन उसके उलट एक खबर है, गुजरात के खेड़ा जिले में एक शहर है काठलाल, जहां पे एक पाटीदार लड़की और एक दलित समुदाय के युवा के बीच प्रेम संबंध का मामला है। दोनों शादी करने के लिए घर से निकल गए हैं, तो इसका विरोध पाटीदारों ने किया है। पाटीदारों ने बुधवार को काठलाल शहर को बंद करके रखा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो लड़की है वो डॉक्टर है, पाटीदार लड़की, और जो लड़का है वो काठलाल बीजेपी यूनिट का ऑफिस बियरर है।
तो बीजेपी क्या करेगी,
तो इसमें बहुत ही दिलचस्प मामला है। अब हो सकता है चुनावी मुद्दा भी बन जाए आने वाले वक्त में। एक दूसरी खबर हिंदुस्तान टाइम्स की है, जिसमें सरकार ने अभी हाल ही में वित्त मंत्री ने जीएसटी की दरों में कटौती की थी, तो उसका जो वो 15 नवंबर से प्रभावी हो गई थी कटौती की दर। लेकिन अखबार का कहना है कि जो ग्राहकों को जो फायदा मिलना है वो शायद न मिल सके, क्योंकि जो एमआरपी है वो तो पहले से उसी दर पर लिखी हुई है, तो अचानक से एमआरपी कंपनियां नहीं बदल पाएंगी, इसलिए ग्राहकों को जो सीधा फायदा पहुंचना चाहिए था वो फायदा नहीं पहुंच सकता है। एक हिंदू की खबर है, द हिंदू की, जिसमें चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी से कहा है कि आप अपने विज्ञापनों में पप्पू शब्द का इस्तेमाल न करें। जैसा कि आप देखते हैं कि इंटरनेट पर कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी के लिए पप्पू शब्द का इस्तेमाल किया जाता है।
बहुत शुक्रिया रजनीश। हालांकि अब ये खबरें आ रही, इस तरह की भी खबरें सोशल मीडिया पे हैं कि अब शायद वो पप्पू नहीं है, खासकर गुजरात में जिस तरह से वो प्रचार कर रहे हैं। और अब खेल समाचार लेकर आ रही हैं सूर्यांशी पांडे।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। सबसे पहले खबर क्रिकेट के मैदान से। आज कोलकाता के ईडन गार्डन ग्राउंड में भारत बनाम श्रीलंका का पहला टेस्ट मुकाबला खेला जाना है। इससे पहले भारत का मुकाबला श्रीलंका के साथ श्रीलंका की सरजमी पर हुआ था, जहां भारत ने टेस्ट सीरीज, ओडीआई सीरीज और टी20 सीरीज में जीत हासिल की थी। कोलकाता में आज होने वाले मुकाबले पर बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और क्रिकेट एक्सपर्ट विजय लोकपल्ली।
कलकत्ता में देखिए सुबह का सेशन और खास करके आखिरी का सेशन बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि बॉल मूव करता है वहाँ पे, तो वहाँ पे फास्ट बॉलर्स को भी हेल्प मिलती है, और विकेट में अगर बाउंस है तो फिर तो बॉलर्स को भी फायदा होगा, खास करके अश्विन और जडेजा अगर उनको अच्छा बाउंस मिला तो बहुत परेशान करेंगे।
श्रीलंका को भारत के साथ भारत में हुए टेस्ट मुकाबलों में 17 बार हार का सामना करना पड़ा है। क्या इस बार वो भारत को चुनौती देने में कामयाब रहेंगे, ये पहले टेस्ट मैच के नतीजों से साफ हो सकता है। अगली खबर बैडमिंटन के कोर्ट से। चीन में चल रहे चाइना ओपन सुपर सीरीज में भारतीय खिलाड़ी सानिया नेहवाल ने दूसरे राउंड में बढ़त बनाई। कल यानी बुधवार को हुए मुकाबले में सानिया नेहवाल ने अमेरिकी खिलाड़ी बेविन जैंग को 21-12, 21-13 से मात दी। चाइना ओपन सुपर सीरीज के दूसरे राउंड में सानिया नेहवाल का मुकाबला होगा जापानी खिलाड़ी अकाने यामागुची से। 2014 में सानिया नेहवाल चाइना ओपन सुपर सीरीज की विजेता रही थी। अब आपको लेकर चलते हैं बिलियर्ड्स की दुनिया में। दोहा में खेले जा रहे IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी पंकज आडवाणी भारत के लिए ब्रोंज मेडल लाने में कामयाब रहे। 17 बार वर्ल्ड चैंपियन रहे पंकज आडवाणी कल यानी 15 नवंबर को हुए सेमीफाइनल मुकाबले में माइक रसल से हार गए, जिसके बाद उनके हाथ ब्रोंज मेडल ही लग पाया। 2015 में हुए वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप में पंकज आडवाणी विजेता रहे थे।
तो खेल समाचार सुना रही थी सूर्यांशी पांडे, और अब आपसे विदा होने का वक्त आ चुका है, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं रजनीश से मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी विदेश नीति की उपलब्धियों को लाइव टीवी के जरिए बताया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका एक बार फिर से भविष्य को लेकर आश्वस्त है। ट्रंप ने कहा कि वो उस राह पर विदेश नीति को ले जा रहे हैं जहां उत्तर कोरिया को परमाणु हथियार के जरिए ब्लैकमेल नहीं करने दिया जाएगा। जिम्बाब्वे की सत्ता पर सेना के नियंत्रण के 24 घंटे बाद वहां मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। आज़ादी के बाद से देश की सत्ता पर काबिज राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे अब भी राष्ट्रपति हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि सेना ने उन्हें नज़रबंद कर रखा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने जिम्बाब्वे में सभी पक्षों से संयम रखने की अपील की है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने लेबनान के प्रधानमंत्री साद हरीरी और उनके परिवार को आमंत्रित किया है। हालांकि मैक्रों ने जोर देकर कहा है कि यह राजनीतिक प्रवास का प्रस्ताव नहीं है।
नाइजीरिया के उत्तर पूर्वी शहर मैदुगुरी में एक आत्मघाती हमला हुआ है। इस हमले में कम से कम 10 लोग मारे गए हैं। बीबीसी समाचार।
तो नमस्कार, भारत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली राजेश चौहान ने। आपसे अगली मुलाकात होगी भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे कार्यक्रम दिन भर में। और अब इकबाल अहमद को अपने तमाम साथियों के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।